हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आरना जैसे होश में आई और एक झटके से रिदांश से दूर हो गई। रिदांश ने भी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला, नंबर देखकर फ़ोन पिक किया। दूसरी तरफ से फ़ोन सुनने के बाद आरना को देखते हुए उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने बस फ़ोन पर आई एम कमिंग कहकर फ़ोन काट दिया। एक नज़र सख्त भाव से आरना को देखने के बाद उसने अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर चला गया। आरना असमंजस में उसे वहां से जाते हुए देखती रह गई। कुछ पल बाद आरना बालकनी से रिदांश को जल्दी में खुद ड्राइव करते हुए अकेले जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ रिदांश जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा था, जैसे वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हो। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बंगले के आगे जाकर रुकी। रिदांश गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर बढ़ गया। बंगले के अंदर कदम रखते ही रिदांश को अनिकेत मिला, जिसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी के मिले जुले भाव थे। रिदांश बिना कुछ बोले सामने बने एक कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर रिदांश अंदर गया। कमरे में एक शख्स जिसकी उम्र लगभग रिदांश जितनी ही होगी, हजारों मशीनों से घिरा बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो सिर्फ एक जिंदा लाश हो और उसका जिस्म सिर्फ मशीनों के सहारे ही जिंदा था। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। देखने में वो शख्स बहुत ही कमज़ोर और बीमार मालूम पड़ रहा था, जैसे कितने अरसे से वो ऐसे ही एक जिंदा लाश की तरह यहाँ पड़ा हुआ हो। उस शख्स को देखते ही रिदांश के चेहरे के भाव, जो हमेशा ब्लैंक ही रहते थे, आज पहली बार उस शख्स को देखकर उसके चेहरे पर दुख के भाव उभर आए। मगर अगले ही पल कमरे में मौजूद डॉक्टर्स को देखकर उसके चेहरे के भाव गुस्से में बदलकर सख्त हो गए। क्या रिपोर्ट है? रिदांश ने सख्त लहजे में पूछा। कितना इम्प्रूव्ड किया और आखिर कब तक दक्ष पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा? देखे मिस्टर अग्निहोत्री, डॉक्टर बोला, हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछले एक साल से मिस्टर दक्ष की कंडीशन वही की वही है। उनके अंदर जीने की इच्छा शक्ति ही नहीं रही है, और जब किसी इंसान की इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाती है तो फिर कोई दवा कोई दुआ काम नहीं आती। और अगर सच कहूँ तो पिछले एक साल से सिर्फ मशीनों और आपकी जिद ने ही आपके दोस्त को जिंदा रखा है, वरना महज एक जिंदा लाश के सिवा ये कुछ भी नहीं है। खबरदार, रिदांश ने गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, जो मेरे दोस्त के बारे में फिर कभी ऐसी बकवास की तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। रिदु, छोड़ो उसे, अनिकेत बीच में आकर डॉक्टर को छुड़ाते हुए बोला, क्या कर रहे हो? रिदांश गुस्से से डॉक्टर के कॉलर को छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो डॉक्टर रिदांश का ये रूप देखकर डर के मारे अपना थूक गटकते हुए उसे जाते हुए देखता रह गया। तुम अच्छे से जानते हो न रिदांश के मूड और गुस्से को, अनिकेत ने डॉक्टर से कहा, तो अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो नेक्स्ट टाइम यूज योर वर्ड्स वाइजली। पर मैंने तो सिर्फ हकीकत ही बताई थी, डॉक्टर डरते हुए बोला। जिस हकीकत को बयां करने से आपकी जान पर बनाए तो बेहतर होता है कि हम अपना मुंह बंद ही रखें। इतना कहकर अनिकेत पहले से ही डरे हुए डॉक्टर को और भी ज्यादा डराकर वहां से रिदांश के पीछे चला गया। अनिकेत ऊपर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर बने एक कमरे में गया, जहां रिदांश पहले से ही मौजूद था और उस कमरे की दीवार पर लगी तस्वीरों को मिले जुले भाव के साथ एकटक देख रहा था। उन तस्वीरों में रिदांश के साथ ही अनिकेत और दक्ष मौजूद थे, जो साथ में उनके खुशी भरे लम्हों को दिखा रही थीं। इन्हें देखने भर से ही साफ मालूम पड़ रहा था कि इन तीनों का दोस्ताना कितना गहरा और अटूट है। कितना खूबसूरत वक्त था ना ये भी, अनिकेत ने तस्वीरों को देखते हुए कहा, जब हम तीनों ने कदम से कदम मिलाकर कामयाबी की तरफ एक साथ अपना पहला कदम बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ इतना लंबा सफर तय किया। लेकिन दक्ष के एक गलत और जज्बाती फैसले ने सब बदल कर रख दिया। उसे ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया, रिदांश ने दक्ष की तस्वीर को देखते हुए अपने जबड़े कसते हुए कहा, वरना जिस इंसान ने हमेशा दूसरों की जिंदगी में रोशनी की, आज उसकी जिंदगी में यूं अंधेरा ना होता। जिसने मुझे दुनिया की नजरों में रिदांश से रिदांश अग्निहोत्री बनने के सफर में पहले कदम से मेरा साथ दिया, आज मैं उसकी ऐसी हालत देखकर चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है रिदांश, अनिकेत बोला, बल्कि सच तो ये है कि अगर तुमने सही वक्त पर दक्ष और उसकी हालत का पता नहीं लगाया होता तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होता। तुमने दक्ष के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया है। नहीं, रिदांश ने सख्त भाव से कहा, अभी मेरा दोस्ती का फर्ज और कर्ज दोनों निभाना बाकी है। जब तक मैं उस इंसान को उसके किए की सजा न दे दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गुस्से से जब तक कि मैं उस लड़की की जिंदगी को जीते जी जहन्नुम न बना दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं आज तक उससे मिला तो नहीं हूँ, अनिकेत बोला, लेकिन जितना भी मुझे प्रेशा ने बताया और जिस तरह से आरना ने आंटी के लिए अपनी जान खतरे में डाली और भी कई चीजें जो मुझे प्रेशा से पता चली, उनसे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही साफ और मासूम दिल है। जिस लड़की की वजह से हमारा दोस्त मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है, उसके बाद भी तुम्हें वो कपटी लड़की मासूम लग रही है, रिदांश गुस्से से अनिकेत की तरफ देखकर बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यकीनन मासूम ही है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कहीं जाने अनजाने हम किसी मासूम को सजा ना दे दें। वो मासूम नहीं है, रिदांश लगभग चिल्लाते हुए बोला। उसकी वजह से मेरा हंसता खेलता दोस्त पिछले एक साल से एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़ा है। मैं जब भी उस लड़की को देखता हूँ, हमेशा मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त का वो आज भी हंसता मुस्कुराता चेहरा ही आता है, जिसे उस लड़की ने बेजान और खामोश कर दिया। मुझे आज भी याद है कि मेरा यार कितना खुश था उस दिन जब वो पहली बार इस धोखेबाज लड़की के जाल में फंसा था। फ्लैशबैक, थर्ड पर्सन पीओवी या राइटर के शब्दों में, दक्ष रिदांश का वही दोस्त था जो उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में एक मसीहा बनकर आया था। उस दिन के बाद से ही दोनों ने जिंदगी के इस सफर में एक दूसरे का साथ और अपनी दोस्ती को कभी नहीं छोड़ा। अनिकेत, रिदांश और दक्ष तीनों ही भाई जैसे दोस्त थे और तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वैसे तो तीनों ही अपने में बेस्ट और अलग पर्सनालिटी के थे, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन थी और वो थी एक दूसरे की दोस्ती के लिए जान भी हाजिर करने का जज्बा। दक्ष रिदांश और अनिकेत के मुकाबले ज्यादा हंसमुख और जिंदा दिल था। अनिकेत भी अक्सर माहौल के हिसाब से बिहेव करके खुद को उसमें ढाल देता था, लेकिन रिदांश इन तीनों में सबसे ज्यादा रिजर्व्ड और गुस्सैल था और बस कुछ ही चंद लोगों के सामने वो खुला हुआ था, जिनमें उसकी माँ के अलावा दक्ष और अनिकेत शामिल थे। अनिकेत अपनी फैमिली से मिलने गया हुआ था और दक्ष अपने काम के सिलसिले में शिमला गया हुआ था और पिछले कई दिनों से वहीं रुका हुआ था। रिदांश अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसके फोन पर दक्ष का कॉल आया। वो दक्ष का कॉल देखकर फोन पिक करता है। हे बड़ी, कैसे हो? दक्ष ने खुशी से पूछा। आई एम गुड, रिदांश ने अपने लैपटॉप को देखते हुए कहा। तुम सुनाओ, और कब आ रहे हो वापस? अभी तो आने का कोई इरादा नहीं, दक्ष बोला, बाकी देखता हूँ कब आना होता है। क्यों, वहीं बसने का इरादा है? रिदांश लैपटॉप पर नजरें गढ़ाए हुए पूछा। हाँ, यही समझो, दक्ष मुस्कुरा कर बोला। बस इतना समझ लो कि यहाँ की हवाओं में दिल लग गया है मेरा। और उस हवा का नाम क्या है? रिदांश ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछा। लेकिन तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दक्ष हैरान होकर बोला।
लोगों के दिल का हाल जानने के लिए मैं लफ्जों का मोहताज नहीं होता, रिदांश ने अपनी कुर्सी से पीठ टिकाते हुए कहा। तेरी यही इंटेलिजेंस तो तुझे दूसरों से अलग बनाती है, दक्ष मुस्कुरा कर बोला। मतलब तुझे तो लोगों की बातों और भाव से ही फट से उनके मन की बातें पता चल जाती हैं। अब ये सब छोड़ और मुझे बता कि कौन है वो और कहाँ मिला तू उससे? यही शिमला में, कुछ दिन पहले ही, दक्ष खुशी से बोला। और उसे देखते ही बस में अपना दिल हार बैठा। फिर बस कुछ मुलाकातें और उसको जानने पर तो समझ आया कि वो बाकी लड़कियों से कितनी अलग है। बस फिर मैंने बिना देरी किए उसको अपने दिल की बात कह दी और अब बस उसकी हाँ के बाद फाइनली अब मैं कन्फर्म हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी मुझे उसके साथ ही जीनी है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, रिदांश बोला। इंटरेस्टिंग, नाम क्या है उसका? थैंक्स, दक्ष बोला। और उसका नाम? कुछ पल रुककर, आरना। एक पल रुककर, आरना कपूर।